الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. یہ بخاری شریف میں کتاب العلم میں 64 نمبر کی حدیث پاک ہے. اس میں ایک خاص عجیب و غریب قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے. پہلے آپ کو ایک لمبا واقعہ گزشتہ سال سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں نبی بنا کر کے بھیجا تو اس وقت دنیا کے اندر دو بڑی سرکار تھی، دو بڑی حکومت تھی جو دنیا کی سپر پاور طاقت حکومت کہی جاتی تھی. ایک ہرقل روم کی، رومان امپائر جو کرسچن اور عیسائی لوگوں کا ہوا کرتا تھا، ان کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر گیا ہے. دوسری اس زمانے کی سپر پاور سرکار اور گورنمنٹ ایران کے مجوسی لوگوں کی تھی. مجوسیوں کو آج کل ہم پارسی کہتے ہیں، اور ایران اس کو اس زمانے میں فارس کہتے تھے. یہ پوری دنیا کے اوپر سرکار چلانے والی، حکومت چلانے والی دوسرے نمبر کی سپر پاور گورنمنٹ تھی. یہاں مجوسی کا، فارس کا، ایران کا جو بھی بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا لقب دیتے تھے، نام تو الگ الگ ہوتے تھے لیکن ان کا اپ نام، پہچان کا نام کسرا ہوتا تھا. وہاں رومان امپائر میں قیصر ہوتا تھا اور یہاں کسرا ہوتا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کسرا بادشاہ تھا اس کا نام پرویز تھا. یہ پرویز اصل میں ایران کے پارسیوں کا نام ہے لیکن اب مسلمان بھی یہ نام رکھتے ہیں. پرویز، اس کے باپ کا نام نوشیروان تھا. یہ نوشیروان جن کے اس انصاف کے قصے بہت سنے سنائے جاتے ہیں، جس رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی اس رات میں پوری دنیا کے اندر کچھ انوکھی باتیں ہوئی تھی، عجیب عجیب باتیں. اس میں ایک قصہ ایسا ہوا کہ ایران کا، فارس کا جو کسرا بادشاہ ہے پرویز، اس کا بہت عالی شان، بہت شاندار محل تھا، بہت مضبوط. تو اچانک دھرتی کمپ کے، زلزلے کے جھٹکے لگے. بعض روایت میں اس کو خواب کہا گیا، بعض روایت میں حقیقت کہا گیا. اور ایسے جھٹکے لگے دھرتی کمپ کے کہ 14 گنبج کنگورے ان کے محل کے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے. اب دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ، اس کا اتنا مضبوط محل اور اس میں اس طریقے سے 14 گنبد کنگورے گر جاوے مینارے، تو اس کو یہ لوگ نحوست سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی نحوست کی بات ہے. تو کسرا بادشاہ بہت دکھی دکھی ہوا، پریشان پریشان ہوا، الجھن الجھن کے اندر رہا. لیکن کیا کرے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بادشاہ قسم کے، وہ اپنی الجھن، اپنی پریشانی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. لیکن ایسا الجھن اور ایسا ٹینشن تھا اس کو کہ اس نے پھر دن کے وقت میں ایک مشورے کی میٹنگ بلائی اور اس میں بڑے بڑے منسٹروں کو، وزیروں کو، حکومت کے لوگوں کو مشورے اور میٹنگ کے لیے بلایا کہ یہ 14 گنبد ٹوٹ گئے، عجیب بات ہو گئی. میٹنگ چل رہی تھی، اس درمیان ایک دوسری بری خبر آئی. دوسری بری خبر یہ آئی کہ یہ پارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور جہاں آگ کی پوجا ہوتی ہے اس کو اگیاری کہتے ہیں گجراتی میں، مندر نہیں کہتے پارسیوں کی عبادت کی جگہ کو، اگیاری بولتے ہیں. اردو میں آتش کدا کہتے ہیں. تو ان کی جو اگیاری تھی جس میں آگ کی پوجا ہوتی تھی وہ تقریباً 1000 سال سے وہ آگ مسلسل جل رہی تھی. ان کی ہسٹری، ان کا اتہاس یہ بتلاتا تھا کہ یہ آگ 1000 سال سے کبھی بجھی نہیں ہے اور ہر وقت وہ اس کو جلاتے ہی رہتے تھے اندر کچھ نہ کچھ ڈال کر کے. तो जो आग 1000 साल से जल रही थी अचानक वो आग बुझ के ठंडी हो गई। ये बड़ी डेंजर दूसरी खबर आई इन लोगों के लिहाज से। तो और ज्यादा वो मीटिंग गम वाली हो गई, मशवरा उनका गम वाला हो गया कि ये क्या हो रहा है। इतने में एक आदमी ने खड़े होकर के एक अजीब ख्वाब सुनाया, कहने लगा किसरा बादशाह सलामत, आज रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, और ख्वाब ये देखा कि अरबस्तान की तरफ से ऊंट आ रहे हैं और आकर के पूरे ईरान के अंदर घुस रहे हैं, और ईरान के जो मजबूत ताकत वाले घोड़े होते हैं उन घोड़ों को उन ऊंटों ने आकर के दबा दिया है, और वहां एक मशहूर नदी है दिजला नदी, वो भी जन्नती नदियों में से एक नदी समझी जाती है, का ये अरबस्तान से आने वाले ऊंट दिजला नदी को पार करके ईरान के घोड़ों को दबा करके पूरे ईरान में अरब के ऊंट घुस गए, फैल गए। ये ख्वाब मैंने आज रात देखा है। तो और ज्यादा टेंशन हो गया, इसीलिए कि जो लोग सरकार में बैठे होते हैं उनका सबसे बड़ा टेंशन होता है अपनी कुर्सी संभालना, कि हमारा ओहदा हमारी कुर्सी बाकी रह गए। तो कहा ताबीर मालूम करो, तो बड़े बड़े आलिम लोगों से ताबीर उन्होंने मालूम की, तो ताबीर के अंदर अजीब ताबीरें आई कि ये जो 14 गुंबद तुम्हारे जलजले में धरती कंप में टूट गए, इसमें इशारा इस तरफ है कि अब 14 नस्ल तक तुम्हारी हुकूमत चलेगी, 14 आदमी तक चलेगी, फिर तुम्हारी हुकूमत ईरान पर से खत्म हो जाएगी। तो पहले तो ये सोचा कि 14 आदमी हमारे खानदान के अभी और बादशाह बने, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। फिर सोचने लगे कि भाई जमाना गुजरने में और आदमी के मरने में कोई देर तो लगती नहीं है, पता नहीं कब हमारी सरकार गिर जावे, हमारी सत्ता और हमारी हुकूमत चली जावे। और ये जो ख्वाब देखा कि अरबस्तान के ऊंट आए, तो उनके बड़े बड़े आलिमों ने उनको ये ताबीर दी कि अरबस्तान के लोग आकर के पूरे ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और ईरान पर अरबस्तान के लोगों की हुकूमत हो जाएगी। तो और ज्यादा ये लोग परेशान उलझन में, ये 3 परेशानी जहन में रखना। पहली चीज, 14 मीनारे कंगूरे गिर गए महल के, तो उसमें इशारा था कि 14 नस्ल तक हुकूमत चलेगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा, अरबस्तान के ऊंट आए और पूरे ईरान में घुस गए, और उसकी ताबीर ये कि अरबस्तान के लोग ईरान की हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे, और जो आग ठंडी हो गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे वो भी एक बड़ी टेंशन की चीज थी। इनको ये खबर नहीं, वो तो बाद में उनके आलिमों ने बतलाया कि अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में पैदा हो चुके और उनके पैदा होने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों में जलजले आ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए, हुदैबिया की सुलह हो गई, अमनो अमान हो गया, तो हुजूर ने दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों को ईमान की दावत देने के लेटर लिखे, खत लिखे। तो उसमें एक लेटर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा बादशाह को भी लिखा और ये मुबारक खत लेकर के एक बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुजाफा सहमी रदी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना फरमाया कि जाओ और ईरान जाकर के बादशाह को वो खत पहुंचा करके आओ। अब ये किसरा बादशाह तो बहुत बड़ा, डायरेक्ट वहां तक तो पहुंच हो नहीं सकती, तो फिर ये तय हुआ कि ईरान की फारिस की हुकूमत तो बहुत बड़ी सेंट्रलाइज हुकूमत उनकी, और उनके अलग 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 छोटे छोटे सूबे हैं, प्रांत है, और उसके गवर्नर है, उसमें से एक प्रांत और प्रोविंस उनका बहरीन भी था, और बहरीन का गवर्नर उस वक्त पर किसरा की तरफ से मुंजिर इब्ने सावा नाम का एक आदमी था, वो बहरीन के गवर्नर। तो ये तय किया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खत लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा बहरीन के गवर्नर के पास जाएंगे और उसके जरिए से जैक लगा करके किसरा बादशाह को हुजूर का खत पहुंचाएंगे। और वो जो लिंक बनाई वो लिंक कामयाब रही। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा बहरीन गए, मुंजिर बिन सावा को वो खत दिया, और खत देने के बाद वो खत किसरा बादशाह को वहां फारिस ईरान एम्पायर के अंदर पहुंचाया गया। खत पहुंचा तो किसरा बादशाह तो पारसी था, मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। उसको जब वो खत पहुंचा तो खत पहुंचते ही वो लाल पीला हो गया, गुस्से में आ गया, और गुस्से में इसलिए आया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना नाम लिखा था और नीचे उसका नाम लिखा था, और हुजूर की यही तर्तीब थी। जो हिरकल वाली हदीस आपने सुनी थी उसमें भी हुजूर के खत लिखने का अंदाज मैंने आपको बतलाया था, तो हुजूर इसी तरह लिखते थे, मिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला या मिन मोहम्मदिर रसूलिल्लाह इला हिरकल रोम इला अजीमिर रोम। तो हुजूर ने इसी तरह खत लिखा था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो अल्लाह के रसूल है उनकी तरफ से ये लेटर है ईरान और फारिस के एम्पायर के बड़े बादशाह किसरा के नाम के ऊपर। फिर हुजूर ने उसको ईमान की दावत लिखी थी खत में, तो उसको पहला गुस्सा तो ही आया। वो क्या समझता था कि आधी दुनिया का मालिक तो मैं, उसमें अरबस्तान भी मेरी सरकार में आता है, तो एक आदमी जो मेरी पब्लिक में से है, मेरी जनता में से है, और वो अपना नाम ऊपर लिखे और मेरा नाम नीचे लिखे, इतना बड़ा इंसल्ट इसने मेरा किया, इसलिए एकदम गुस्से में वो लाल पीला हो गया। और मारे गुस्से के उसने क्या किया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खत उसने फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बहरीन में एक ब्लॉक बनाया है सरकारी तौर पर, उसमें वो खत है, और वो ही बीच में फटे हुए निशान भी साफ नजर आते हैं, वहां रखा हुआ है, एक ब्लॉक बनाया है सरकारी तौर पर, फाड़ दिया उसने, चीर डाला। और इतना गुस्से में के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का उसने ऑर्डर किया, कि ये आदमी जो अपने आप को नबी कहता है कत्ल करो उसको, ऑर्डर किया उसने। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा साहमी रदी अल्लाह ताला नो सब सीन मंजर देखते रहे और वहां से सीधे नाउम्मीद होकर मदीने मुनव्वरा पहुंचे और मदीना आकर सफर की कारगुजारी हुजूर को सुनाई कि उसने तो आपका मुबारक खत फाड़ दिया, चीर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। तो जब ये बात हुजूर ने सुनी तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, इसने मेरा खत फाड़ा है, अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नबी की बेअदबी कोई मामूली चीज थोड़ी है, नबी की गुस्ताखी की सजा भुगतनी पड़ती है कि इसने मेरा खत फाड़ा, अल्लाह उसकी हुकूमत को चीर फाड़ के खत्म करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे। अब सुनो अजीबो गरीब हिस्ट्री, हुजूर की बद्दुआ कैसे रंग लाई। वो किसरा बादशाह तो अपनी हुकूमत, अपनी सत्ता, अपना पावर, उसके घमंड में, तो उसने ये सोचा कि अरब से करीब में मेरी कौन सी जो है, मेरा कौन सा प्रांत और प्रोविंस लगता है अरब के करीब में, तो कहा यमन। यमन अरब के बिल्कुल करीब है, मदीना मक्का के, और यमन भी उस वक्त किसरा की हुकूमत में आता था, और यमन का गवर्नर उस वक्त पर एक आदमी था, उसका नाम बाजान था, वो गवर्नर था यमन का। तो किसरा बादशाह परवेज इब्ने नौशीरवाने बाजान जो यमन का गवर्नर था उसको ऑर्डर भेजा कि तुम अभी के अभी जाओ मक्का मदीना, और ये कोई कुरेश का आदमी मोहम्मद नाम का है जो खुद को नबी कहता है, जाकर के उसको सजा दो, उसके पास माफी मंगवाओ, उसने अपना नाम ऊपर लिखा मेरा नाम नीचे लिखा, इतनी हिम्मत उसमें आ गई, जाके उसके पास माफी मंगवाओ, और माफी नहीं मांगे तो कत्ल करके उसका सर मेरे पास पहुंचाओ। ये ऑर्डर जारी किया उसने। सत्ता का नशा बड़ा डेंजर होता है, वो तो जब उतरता है तभी हकीकत समझ में आती है। तो बाजान को खत मिला, तो बाजान ने दो पहलवान एकदम मजबूत ताकत वाले पावरफुल यमन से रवाना किए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के वास्ते, कि किसरा बादशाह का ऑर्डर भी बतला देना और पकड़ के ले आओ उनको। ये दोनों पहलवान चले यमन से, ताइफ होते हुए आ रहे थे अरबस्तान की तरफ। ताइफ में किसी को पूछा कि ये मोहम्मद कहां मिलेंगे, तो वहां कुछ कुरेशी व्यापारी लोग मिल गए, उन्होंने कहा कि वो मदीना है, इस वक्त मक्का से मदीना चले गए, वहां मिलेंगे तुमको। तो वो दोनों पहलवान सीधे मदीना आए, और मदीना आकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की। अब अजीब मुलाकात का मंजर है, वो भी हमारे लिए इबरत है। ये दोनों आए, ये मुसलमान नहीं थे, एक तो ईरान का पारसी पहलवान और दूसरा एक यमन का था, दोनों पहलवान आए। अब हुजूर ने जो उनको देखा तो हुजूर उनसे बात करने ही तैयार नहीं, चेहरा मुबारक आपने फिरा लिया उनकी तरफ से, एकदम नाराजगी में, और चेहरा इसलिए फिराया कि आने वाले दोनों पहलवानों की दाढ़ी मूंडी हुई थी और मूछें बड़ी बड़ी इनकी थी। हुजूर उनकी तरफ देखने तैयार नहीं, अंदाजा लगाओ हदीस के ऊपर कि एक गैर मुस्लिम لیکن داڑھی منڈی ہوئی اور مونچھ بڑی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غیر مسلموں کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر مسلمان داڑھی منڈوائے تو اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی, سوچنے کی چیز ہے. اس لیے ہم کو ہماری اسلامی پہچان, حضور کی محبت چاہیے, حضور کی نظر کرم چاہیے, تو پھر ہمیں جو ہے سنت کے مطابق داڑیاں رکھنی چاہیے. حضور نے پوچھا ان کو, منہ پھرا کر بات کر رہے تھے, اسے ایسی شکل کیوں بنائی تم نے کہ مونڈی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں؟ تو کہا ہم کو ہمارے رب نے کہا ہے. رب یعنی کسرا بادشاہ نے کہا, رب نے کہا ہم کو کہ داڑھی لمبی کرو, مونچھ منڈواؤ, یہ رب کہتا ہے ہم کو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب میرے اللہ تو مجھے یوں کہتے ہیں کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھ منڈواؤں. الٹی بات, تیرا رب یوں کہتا ہے کہ داڑھی منڈاؤ مونچھ بڑھاؤ, اور میرے رب اللہ مجھے یوں کہتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ منڈواؤ. یہ میرے اللہ مجھے کہہ رہے ہیں, بولو کیا بولنا ہے؟ تو دونوں پہلوان دھمکی کی زبان میں بولنے لگے, کسرا کا آرڈر ہے, ہم آپ کو پکڑنے آئے ہیں, پکڑ کے لے جائیں گے ہم آپ کو. دھمکی کی اسٹائل میں بول لے حضور کے سامنے. پھر کیا دھمکی دی؟ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر دیکھو کسرا بادشاہ بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرے گا, آپ بھی قتل ہو جاؤ گے اور پوری مدینہ کی پبلک بھی قتل ہو جائے گی, آپ کی قوم بھی قتل ہو جائے گی. سلامتی اس میں ہے کہ میرے ساتھ چلو تم. حضور کو دھمکی دے کر کہہ رہے دونوں پہلوان. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, کل مجھے ملنا. اس زمانے میں آج کی طرح تھوڑا لمبا سفر کر کے کتنے دن میں پہنچے, جاؤ آج آرام کرو کل ملنا مجھے. وہ دوسرے دن آئے حضور کو ملنے, تو اتنے میں اللہ کے یہاں سے جبرائیل امین وحی کے ذریعے پیغام لے کر آ چکے تھے. کہا ان دونوں پہلوانوں کو کہو کہ جاؤ تم واپس جاؤ, ہم تو نہیں آتے. یہ زبردستی تو لے نہیں جا سکتے, یہاں تو صحابہ کی پوری ٹیم ہے. تو کہا جاؤ ہم نہیں آتے. اور رہا تیرا کسرا بادشاہ اور اس کی دھمکی, تو حضور نے ایک تاریخ بتلائی, ایک مہینہ اور ایک تاریخ آگے کی, کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو اس دن تیرا جو رب ہے کسرا بادشاہ اس کو میرے رب میرے اللہ قتل کر دیں گے. پوری تاریخ اور دن کے ساتھ حضور نے ان کو کہا جاؤ تم یہاں سے. تم جو جس کو بڑا کہتے ہو کسرا بادشاہ اس کو میرے رب اللہ اس مہینے کی اس تاریخ کو قتل کر دیں گے, جاؤ. وہ چلے گئے وہاں سے اور جا کر کے یمن جا کے بازان کو ملے. کہا ہم تو پکڑنے گئے تھے, وہ تو پکڑا ہوئے نہیں, وہ تو آئے نہیں, اور اوپر سے انہوں نے تو یہ جواب کہلوایا کہ اتنا بڑا کسرا بادشاہ اس نے تو تاریخ بھی فکس کر کے دی, دن بھی فکس کر کے دیا کہ اس مہینے اس تاریخ کو تمہارے کسرا بادشاہ کو میرے اللہ قتل کر دیں گے, سب فکس کر کے دیا. تو بازان ہوشیار آدمی تھا, گورنر تھا, کہا یہ تاریخ سلامت رکھو دیکھو کیا ہوتا ہے. اب حضور کی بدعا کا اثر دیکھو کیسے اللہ کے نبی کی بدعا رنگ لاتی ہے. ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کسرا بادشاہ نے آرڈر بھیجا, وہ دو آدمی آئے, بازان گورنر نے بھیجے, سب ہوا. ادھر یہ ہوا کہ راجاؤں کو بادشاہوں کو بیویاں کرنے کی شادی کرنے کی تو کوئی نوائی نہیں ہوتی. وہ کسرا بادشاہ پرویز ابن نوشیر وہاں, اس نے ایک بہت خوبصورت عورت سے شادی کی, जिसका नाम शीरीन था। ये फारसी में शीरीन मीठी चीज को कहते हैं, और कहते हैं कि पूरे ईरान के अंदर वो अजीबोगरीब खूबसूरत औरत थी शीरीन नाम की। उसके साथ ये परवेज नौशीरवां का बेटा किसरा बादशाह, उसने शादी की। अब इसके और भी औलाद थी परवेज की दूसरी बीवियों से, तो उसका एक नौजवान बेटा था शिरोया नाम का, वो दूसरी बीवी से, ये तो नई बीवी अभी अभी आई। तो शिरोया ने देखा कि अब्बा तो बहुत अच्छी बीवी शादी करके लाए, तो बेटे की नजर, जवान बेटे की नजर वो नई अम्मा पर बिगड़ी कि बुढ़ा कहां लाया, ये तो मेरे लायक होनी चाहिए। देखो अल्लाह कैसे गैबी इंतजाम कर रहे हैं, खुदा का निजाम देखो। शिरोया जो परवेज किसरा बादशाह का जवान बेटा का, ये शीरीन तो मेरे पास होनी चाहिए, ये बुढ़े के पास कहां आई। तो उसने अपने बाप को कत्ल करने का प्लान बनाया। देखो खुदा सगे बेटे को खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की बद्दुआ का असर देखो। सगे बेटे के दिल में ये जज्बा आया कि मैं ये शीरीन को मैं ले लूं, और जब तक बुड्ढा जिंदा है वहां तक थोड़ी ये मिलेगी, इसलिए पहले बुड्ढे को मारो, सुलाओ उसको, उसको मार दूंगा तो फिर मैं किसरा बन जाऊंगा, सरकार मेरी हो जाएगी, हुकूमत मेरी हो जाएगी, और ये नई खूबसूरत बीवी है वो भी मुझे मिल जाएगी। इसलिए उसने प्लान बनाया बाप को कत्ल करने का। बाप भी किसरा बादशाह था परवेज, बड़ा होशियार वो भी, उसको अंदाजा हो गया कि बेटा मुझे कत्ल करने के प्लान में है, उसके चक्कर में है कि वो मुझे कत्ल करेगा। इसलिए उसने भी एक बड़ी चालाकी की, एक सोने की बोतल ली, और उस बोतल के अंदर उस जमाने में जो डेंजर से डेंजर पॉइजन जहर हो सकता है, जहरुल हलाहिल उसको कहते हैं, खतरनाक जहर कि दो चार खतरे में ही आदमी मर जावे, ऐसा जहर उसने मंगवाया और सोने की बोतल में भरा बाप ने, और अपने बेडरूम में वो रख दिया है, और उस पर लिख दिया कि इस बोतल के अंदर जो दवा है ये सेक्स के लिए बहुत फायदे की दवा है, ऐसा लिख दिया उसके ऊपर। देखो बेटा बाप को मारने का प्लान बना रहा है और बाप बेटे को कत्ल करने का प्लान बना रहा है, खुदा की शान देखो। और फिर उसने तो रख दिया। कुछ दिनों के बाद बेटा अपने बाप को कत्ल करने के प्लान में कामयाब हो गया, और एक दिन मौका पा करके बेटे ने अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया। ये हुकूमतों की सत्ता की हिस्ट्रियां सब ऐसी ही है, सब ऐसी ही है कि वहां कोई किसी का नहीं होता है, हर एक कुर्सी का बेटा होता है। तो उसने सगे बाप को कत्ल करवाया शिरोया ने परवेश को, कत्ल करवाया तो आप खुश, बाप का एक ही बेटा, अब मैं बादशाह, पूरे मजूसी फारिस ईरान एम्पायर का मैं बादशाह, आधी दुनिया का, ऐलान कर दिया उसने। और उसने सब जगह फरमान का लेटर भी चालू कर दिए लिखना, अब से मैं किसरा हूं सब जगह। उसको ये किस्सा मालूम था कि मेरे बाप ने अरब में कोई मोहम्मद नाम के आदमी को कत्ल करने का ऑर्डर भेजा था, उसको मालूम था बेटे को। तो उसने यमन के गवर्नर बाजान को लेटर लिखा, क्या लेटर लिखा, कि मेरा बाप परवेज किसरा बादशाह, उसको तो मैंने कत्ल कर दिया, अब मैं बादशाह हूं, और मेरे बाप ने तुमको जो अरब में एक मोहम्मद नाम के आदमी को कत्ल करने के लिए कहा था, अभी उसको कत्ल मत करना जब तक मैं दूसरा ऑर्डर नहीं भेजूं, वहां तक अभी उसको कुछ मत करना। ये खुद खत भेजता है वो, और उस जमाने के अंदर मीडिया था नहीं, न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न सोशल मीडिया। लेटर के जरिए खबर जाती थी, महीने महीने के बाद खबर पहुंचती थी। तो जब ईरान से यमन खबर पहुंची और बेटे शिरोया का लेटर पहुंचा बाजान के नाम पर, तो बाजान तो हैरान। अंदर लिखा था कि मैंने अपने बाप को इस तारीख में कत्ल किया, और कत्ल इसलिए किया कि वो लोगों पर बहुत जुल्म करता था, ऐसे वैसे जो बाने लिखने थे वो लिखे उसने। वो बड़े बड़े सरदारों को कत्ल कराता था, इसलिए मुल्क में इंतिशार हो रहा था, इसलिए मैंने कत्ल करवा दिया। अब अजीब बात सुनिए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दो पहलवान जो पकड़ने गए थे उनको जो महीना जो तारीख लिख के दी थी, बताई थी, भी ऐनी ही वही महीना वही तारीख उसके अंदर जो है उसके बेटे ने उसके बाप को कत्ल किया, बिल्कुल हु बहु सेम टू सेम, एक दिन का फर्क नहीं उसके अंदर। इसलिए कि वो तो अल्लाह के यहां से खबर आई थी जिब्राइल के जरिए, इसलिए वो तो 100% सच्ची खबर, बिल्कुल सच्ची खबर निकली। तो सबसे पहले तो वो यमन का गवर्नर बाजान हैरान रह गया कि ये मदीना वाले मोहम्मद हकीकत में अल्लाह के नबी है। उसके मुकद्दर में ईमान था, उसने फौरन ईमान कबूल किया, और दूसरे जो उसके साथ लोग थे सब ने ईमान कबूल किया, और यमन में ईमान की हवा चल पड़ी, बिल्कुल सच्ची खबर की बुनियाद के ऊपर। अब अल्लाह सुबहानहु व तआला की कुदरत, जो किसरा बादशाह हुजूर को कत्ल कराने का ऑर्डर करता है, उसको अल्लाह ने कैसे तरीके से उसके बेटे के जरिए कत्ल करवा दिया। अब आगे की बात सुना, वो शीरीन को खबर हुई कि मेरे शोहर को बेटे ने कत्ल कर डाला है, तो उसने सोचा कि अब बेटा मुझे ले लेगा, और वो बेटे के पास जाना नहीं चाहती थी, तो शीरीन ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी करके वो मर गई कि मुझे जाना ही नहीं है इसके बेटे के पास। तो शोहर भी गया परवेज बादशाह, और बीवी शीरीन भी गई, दोनों मर गए। अब जब हाथ में सत्ता आई तो ये अपने बाप के रूम में गया सब चेक करने, क्या क्या चीजें अब्बा ने छोड़ी है, जो उनका सरकारी बंगला महल उसमें सब चेक करने गया, तो सब दवाओं की बोतलें देखी, तो एक बोतल पर नजर पड़ी, और नौजवानों को इससे अच्छी दवा और कौन सी अच्छी लगे, तो वो दवा पर, ये पूरा किस्सा रिवायतों में आया कि वो बोतल पर नजर पड़ी कि इसके अंदर वो दवा है कि जो इंसान की ताकत बढ़ाती है, तो वो उसने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी दवा, ये बुड्ढा इसी को पी पी करके जो है जवानी के मजे लेता था। तो बेटे ने बोतल खोली और बोतल खोल के वो दवा खुद पी गया, बस वो तो हलाहिल जहर था, और बाप ने ये दवा का स्टिकर लगा के वहां रखा था, बेटे ने पिया शिरोया ने, तो वो बेटे की भी मौत हो गई, वो भी मर के खत्म हो गया। क्या अल्लाह के नबी का खत फाड़ा इन्होंने, बाप गया, औरत गई, बेटा गया, तीन मरे। इसी पर इक्तिफा नहीं, आगे सुनो नबी की बेअदबी का वबाल सुनो। जब किसरा बादशाह परवेश को उसके बेटे ने कत्ल किया और खुद हुकूमत पर आया, तो हुकूमत वालों को एक खतरा क्या लगा रहता है, हमारी फैमिली का कोई दूसरा आदमी मुझे मार नहीं डाले और मेरी जगह वो बादशाह नहीं बन जावे। ये नौजवान शिरोया को दिल दिल में ये डर कि हमारे खानदान का कोई दूसरा आदमी मुझे मार के वो सत्ता पे नहीं आ जावे, तो उसने क्या किया, अपने खानदान में जितने भी मर्द थे सब मर्द को एक एक करके कत्ल करवा डाला, ताकि सत्ता हाथ में से जाने का कोई डर ही नहीं रहे और वन मैन शो हुकूमत चले। ये शिरोया ने काम किया है। सब मर्द मर गए। अब खुदा की शान, बाप परवेश गया, शीरीन औरत गई, बेटा शिरोया गया और खानदान में कोई मर्द तो बचा नहीं था, अकेली औरतें ही औरतें थी। तो आखिर में उन्होंने खानदान की एक औरत को किसरा बना करके हुकूमत पर बिठाया कि चलो औरत ही को बिठाओ, अब इनको सरकार सौंपो, इनको सत्ता सौंपो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने मुनव्वरा खबर पहुंची कि किसरा गया, बेटा गया, खानदान के मर्द कत्ल हुए, अब एक औरत को उन्होंने किसरा बनाया। तो हुजूर ने क्या फरमाया, लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरा औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो किसी औरत को अपना अमीर बनावे। हुजूर ने ये जुमला मदीना में बैठ के इरशाद फरमाया। हमारे लिए भी ये नसीहत की हदीस है, जिन्होंने औरतों को अमीर बनाया, चाहे बाकायदा अमीर बनावे चाहे प्रैक्टिकली अमीर बनावे, दोनों तरह के अमीर बनते हैं। एक नाम से अमीर बने और एक ये है कि नाम तो मर्द का है, चलती सब उनकी है, तो भी वो प्रैक्टिकली अमीर है। आजकल सब जगह यही माहौल है घरों के अंदर कि घर में पूछना पड़ेगा, कोई भी बात कहो का घर में पूछना पड़ेगा, छोटी से छोटी बात भी। यानी वो डिसीजन और वो फैसले जो मर्द को खुद लेने के होते हैं, जरा घर में बात करके मैं कहूंगा। कैसा जमाना आ गया। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम ने किसी औरत को अपना अमीर बनाया वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, इरशाद फरमाया। और हुआ भी ऐसा ही। वो जो 14 गुंबद गिर गए थे शुरू में मैंने आपको बतलाया, तो बराबर एक के बाद एक 14वें नंबर के ऊपर, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाना में काफी ईरान की हुकूमत कमजोर हुई और हुजूर ने एक पेशीन गोई की थी। क्या फरमाया था, इजा हलक किसरा फला किसरा बादहु, कि एक मर्तबा किसरा बादशाह मरेगा तो कयामत तक कोई दूसरा किसरा जन्म नहीं ले सकेगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया था। और हुआ ऐसा, हुजूर का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर अमीर बने, फिर हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हुम अमीर बने, हजरत उमर शहीद हुए तो हजरत उस्मान गनी अमीर बने। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हों के मुबारक जमाने के अंदर पूरी ईरान की हुकूमत, किसरा का एम्पायर ऐसा खत्म हुआ कि कयामत तक के लिए उसका खात्मा हो गया। और हुजूर ने खुशखबरी दी थी साहबा को कि तुम किसरा बादशाह के खजानों पर कब्जा करोगे। वो तो वहां खंदक में खड्डे खोदते खोदते पेट पे पत्थर बांधे भूख की वजह से परेशान हाल है, और 10-10 साहबा की जमात थी खंदक खोदने में। तो जिस जमात में हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला, वो भी फारिस और ईरान के हजरत सलमान, तकरीबन 200 से ऊपर साल की इनकी उम्र हुई हजरत सलमान फारसी की, एक कॉल में 250 साल की उम्र हुई हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला की। वो जिस जमात में थे वहीं वो बड़ी चट्टान निकली थी जो टूट नहीं रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और हुजूर नीचे खड्डे में उतरे, अपने मुबारक हाथ में पावड़ा लिया और एक मर्तबा मारा, दूसरी मर्तबा मारा, तीसरी मर्तबा मारा, पूरी चट्टान के चूरे चूरे हो गए। और हुजूर ने उस वक्त बहुत सारी खुशखबरियां दी। एक खुशखबरी ये दी कि किसरा बादशाह के खजानों पर मेरी उम्मत कब्जा करेगी। तो उस वक्त दुश्मन मदीना में हंसने लगे, तालियां बजाने लगे कि अभी तो मक्का वालों से मुकाबला नहीं हो रहा है, खाने के फांफे हैं, पेट पे पत्थर है और किसरा के खजानों के ख्वाब देख रहे हैं। हंसे थे दुश्मन लोग, तालियां बजाई थी, منافق دشمنوں نے. تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے, خلافت کا تیسرا زمانہ چل رہا ہے اور ایران کی مجوسیوں کی پارسیوں کی پوری حکومت ختم ہوئی اور ان کے شاہی محل صحابہ کرام کے قبضے میں آئے, تو حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی, وہ کہتے ہیں کہ جب ایران کے شاہی محل میں ہم لوگ پہنچے اور کسرا بادشاہ کا وہ سفید رنگ کا محل سنگ مرمر کا سفید مرمر کا بنا ہوا اور اس میں ہم داخل ہوئے, اللہ یہ عرب کے اونٹ آ گئے. جو خواب دیکھا تھا نا کتنے سال پہلے کہ عرب کے اونٹ آئے, دجلہ ندی کو پار کیا, پورے ایران میں گھسے, ایران کے گھوڑوں کو دبا دیا, یہ آئے عرب کے لوگ. اور جب اس کے خزانے کے اوپر ہم نے ہاتھ لگایا اور اس کے خزانے کو ہم نے جمع کرنا شروع کیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے پوری فرمائے. میرے دینی بھائیو, بڑی عبرت کی یہ حدیث ہے, عجیب یہ واقعہ بخاری شریف میں جو آیا بڑا عبرت کا ہے کہ دنیا کی سپر پاور ایک گورنمنٹ اللہ کے نبی کا خط پھاڑے اور نبی کی بددعا لیوے تو اللہ تعالیٰ پوری حکومت کو تباہ و برباد کر دے. نبی کی بے ادبی اور گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں ہوا کرتی, اسی لیے کبھی بھی نبی کی کسی بھی بات کسی بھی کام کسی بھی سنت کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. آدمی کمزور ہے, شیطان ہے, نفس ہے, عمل نہ کر سکے, معافی مانگے اللہ سے, لیکن بے ادبی کرے, گستاخی کرے, بے ادبی کی بات بولے, یہ انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. اور دوسری بات بڑی اہم کہ وہ دو پہلوان جو دشمن تھے کافر, ان کے سامنے حضور نے نظر نہیں فرمائی اس لیے کہ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی. تو اگر مسلمان داڑھی منڈوائے تو اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے اگر دل میں حقیقت میں نبی سے محبت ہے, نبی کی محبت بھری نظر چاہتے ہو تو چہرے کے اوپر داڑھی والی سنت زندہ کرو, مونچھوں کو منڈاؤ جیسے حضور نے فرمایا, مونچھ کترواؤ, مونچھ کم کرو. اور جیسا حضور نے فرمایا ہر چیز پوری ہوئی, حکومت ختم, حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم, اور ایسی ختم کہ آج تک پھر وہ کسرا بادشاہ کوئی بن نہیں سکا, اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک بن سکتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائیں, سچی عقیدت عطا فرمائیں, حضور کی ہر چیز کا اللہ ہمیں ادب اکرام احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک سید آدمی مجھے ملنے آیا, میں بہت اکرام کرتا ہوں جو واقعی سید ہوتا ہے, کہنے لگے کہ میری بہن نے ایک خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر مجھے چاہیے. کہا کیا خواب دیکھا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے اور میری بہن اس کا کپڑا وغیرہ کچھ کھینچ رہی ہے جنازے کے اوپر. تو قدرتی بات اللہ نے دل میں ڈالی, میں نے کہا بھائی جا کے اپنی بہن کو ذرا پوچھ کے آؤ کہ حضور کی شان میں کبھی کچھ بے ادبی تو تم سے نہیں ہوتی ہے, گستاخی تو نہیں ہوتی ہے. تو اس نے گھر جا کر کے بہن کو بتایا, پھر آ کر کے کہا کہ ہاں ایسی بھول غلطی ہو رہی تھی. میں نے کہا بس بہن کو کہو کہ سچی پکی توبہ کر لو اللہ کے سامنے, اللہ کے نبی کی جو بھی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی ہو سچے پکے دل سے توبہ کر لو. یہ خواب میں تم کو اشارہ ہے کہ دل میں سوچ میں وچار میں کسی جگہ پر بھی نبی کی بے ادبی آنی نہیں چاہیے. امت کے ایمان کا جز ہے نبی کی محبت, نبی کا اکرام, نبی کا ادب, ذرہ برابر بھی وچار میں بھی بے ادبی نہیں آنی چاہیے. اللہ ہمیں ایسا سچا پکا محبت کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.